आशुतोष और काजल के सच बताने के बाद यज्ञ की सूझबूझ की वजह से उसने आशिका के सच को पहचान लिया था। हालांकि आशिका शुरू में उससे नाराज थी, लेकिन यज्ञ ने उसे मना लिया था। जिस तरह से शुरुआत में आशिका रूखे तरीके से बात कर रही थी, उसे यज्ञ को यही लगा कि ये उसके लिए आसान नहीं रहने वाला। खुद आशिका तक को हैरानी हो रही थी कि आखिर यज्ञ के गले लगने के बाद ऐसा क्या हुआ जो कुछ ही पलों में वो अपनी नाराजगी को भूल गई थी। देखा जाए तो यज्ञ भी उस वक्त बच्चा था और जो भी हुआ उसमें वो कुछ नहीं कर सकता था। उसके अलावा आशुतोष और काजल से उसकी मुलाकातें बहुत ही कड़वी रही थीं। यज्ञ से उसकी बहस जरूर हुई थी, लेकिन यज्ञ ने उसके कैरेक्टर या उसकी परवरिश पर सवाल नहीं उठाया था। आशिका को यज्ञ के साथ ज्यादा वक्त बिताने का मौका नहीं मिला। वो यही चाहती थी कि वो अभिमान से बात कर सके, पर यज्ञ का फोन डेड हो चुका था। ऊपर से गर्व के बीच में आ जाने की वजह से वो अभिमान के लिए कोई मैसेज भी नहीं छोड़ पाई थी। गर्व आशिका को लेकर वापस एजेंसी ऑफिस जा रहा था। गाड़ी में बैठते ही गर्व ने आशिका की तरफ देखा। फिलहाल उसने कुछ नहीं पूछा और गाड़ी स्टार्ट करने के कुछ मिनट बाद उसने गहरी सांस लेकर कहा, सो तुम्हारी एक फैमिली है? वो तो पहले से भी थी, लेकिन तुम्हारा कोई ट्विंस है इस बारे में मैं नहीं जानता था। अब जान गए हो तो आई होप कि तुम किसी से कुछ नहीं कहोगे, आशिका के मुंह से तुरंत निकला। वो नहीं चाहती थी कि उसकी फैमिली का सहारा लेकर उसे वहां काम करने पर मजबूर किया जाए। मैं तुम्हारा डर समझता हूँ, डोंट वरी, ये सब हमारे बीच में ही रहेगा, गर्व ने आश्वासन दिया। उसके दिमाग में और भी सवाल उठ रहे थे, पर फिलहाल वो चुप था। जिस तरह से आशिका ने यज्ञ के बारे में किसी और को बताने से मना किया था, उसे साफ जाहिर था कि वो अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में उसे कुछ और नहीं बताने वाली है। अगर आज गर्व आशिका के साथ मौजूद नहीं होता तो कभी उसे यज्ञ के बारे में पता नहीं चलता। आशिका ने गर्व की तरफ देखा, जो चुपचाप ड्राइव जरूर कर रहा था, पर बार बार बेचैनी से आशिका की तरफ देख रहा था। मुझे पता है तुमने मेरे बारे में काफी कुछ पता लगा रखा है, कुछ मिनट की खामोशी के बाद आशिका बोली। हाँ, तुम्हारी मॉम अच्छी नहीं है, तुम अलग रहती हो और तुम्हारे साथ तुम्हारा दोस्त और मैनेजर भी काम करता है। मैं तुम्हारे बारे में पता नहीं लगाना चाहता, लेकिन हर बार तुम मुझे ऐसी सिचुएशन में मिलती हो कि मुझे खुद ब खुद सच का पता चल जाता है। पिछली बार जब तुम्हें लेने गया था तब तुम अपनी माँ से बहस कर रही थी, गर्व बोला। इसी के साथ उसे एहसास हुआ कि जैसे आज वो इत्तेफाक से यज्ञ से मिला क्योंकि वो आशिका के साथ था, उसी तरह उसे स्काई के बारे में पता चला था। स्काई के अलावा वो तृप्ति को भी देख चुका था। तृप्ति के साथ सेलिना मौजूद रहती थी, इसलिए वो सेलिना के बारे में भी जानता था। आशिका के बारे में इतना सब कुछ पता होने के बावजूद आज तक गर्व ने विराज को उसकी एक छोटी सी खबर भी नहीं दी थी। आज भी जब गर्व को पता चला कि वो लोग आशिका के खिलाफ प्लानिंग करके उसे काम करने पर मजबूर करने का सोच रहे हैं, तब गर्व सबसे पहले आशिका को उन सबसे दूर लेकर आया ताकि उसे सतर्क कर सके। आशिका आराम से गर्व पर भरोसा कर सकती थी। आशिका ने सिर हिलाया और धीमी आवाज में कहा, तुम जिससे मिले थे वो मेरी रियल फैमिली नहीं है। हाँ, उनका बिहेवियर देखकर डाउट तो मुझे भी हुआ था, गर्व ने जवाब दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरी रियल फैमिली अच्छी है, उनका बिहेवियर तो उनसे भी ज्यादा खराब है, आशिका ने भारी आवाज में कहा। उसने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया था। इमोशनल होना और रोना बुरा नहीं है, तुम हमेशा अपने इमोशंस छुपा के रहती हो और बातें दिल में रखती हो, अब जब इतना बताने की हिम्मत कर ही ली है तो आगे भी बता दो, गर्व ने उसे समझाया। बचपन में मेरा किडनैप हो गया था और मेरा किडनैप करने वाली वही औरत थी जिसे अब तक मैं अपनी मॉम समझती थी। मैं हमेशा खुद में कमी ढूंढती थी और ये सवाल पूछती रहती थी कि मैंने ऐसा क्या किया है जो वो मुझसे इतनी नफरत करती हैं। बाद में पता चला कि वो नफरत मेरे लिए इस वजह से थी क्योंकि वो मेरे पेरेंट्स से नफरत करती थी और उनका बदला लेने के लिए उन्होंने मेरे साथ ये सब किया, आशिका ने गर्व को जितनी बात जरूरी थी उतनी ही बताई। हाँ, इस तरह के इंसिडेंट होते रहते हैं, बाकी तुम अपने रियल पेरेंट्स से मिल चुकी हो तो अच्छी बात है ना, और आज तो तुम्हें तुम्हारा ट्विन ब्रदर भी मिल गया। सच कहूँ तो उसकी आंखें ही बता रही थी कि वो तुम्हें देखकर कितना खुश हुआ था और तुमसे और भी बात करना चाहता था, गर्व ने हल्का मुस्कुराकर कहा। यज्ञ के बारे में सोचकर आशिका के फेस पर भी हल्की स्माइल आ गई थी। पिछली बार जब वो दोनों मिले थे तब बिल्कुल भाई बहन की तरह ही लड़ रहे थे। हाँ, उससे मिलकर मुझे अच्छा लगा, पर अपने पेरेंट्स से नहीं। यज्ञ को मेरे बारे में पता चल गया है, इसका मतलब उन्हें भी इस बात का पता होगा कि मैं उनकी बेटी हूँ, आशिका बोली। वो बहुत खुश हुए होंगे, गर्व ने उसके हाथ को सहलाकर कहा। ये क्या पता, नहीं हुए होंगे, आशिका के मुंह से निकला, जिसे सुनकर गर्व भी एक पल के लिए चौंक गया था। आशिका ने उसे पूरी बात बताते हुए कहा, पहले वो मुझसे नफरत करते थे क्योंकि मेरी फॉस्टर मॉम को वो मेरी रियल मॉम समझते थे। सच कहूँ तो अब मुझे इस बात से फर्क पड़ना बंद हो गया है कि कोई मेरे बारे में क्या कहता है या मेरे रियल पेरेंट्स कौन है। आई विल नॉट लाई, मुझे यज्ञ से मिलकर अच्छा लगा, पर मैं अपनी फैमिली से दोबारा नहीं मिलना चाहूंगी। ये फैसला पूरी तरह तुम्हारे ऊपर है। मैं बस तुम्हें यही समझाऊंगा कि तुम उनसे नहीं मिलना चाहती, इस चक्कर में एजेंसी ज्वाइन मत कर लेना, गर्व ने गंभीर आवाज में कहा। और तुम ऐसा बोल रहे हो जो ये चाहता है कि मैं उसके साथ रहूं, आशिका चौंकते हुए बोली। गर्व हल्का सा हंस दिया था। वो जवाब में बोला, हाँ सरप्राइज तो मैं भी हूँ कि मैं तुम्हें ये एडवाइस दे रहा हूँ, पर अगर यहाँ काम करोगी तो खुद को खो दोगी। इमोशंस के मामले में तुम किसी रोबोट को भी पीछे छोड़ दोगी। बेहतर होगा खुद को एक्सप्लोर करो और अच्छी जिंदगी बिताओ। बाकी हम दोनों मिलते रहेंगे, क्योंकि मुझे भी काम से थोड़ा ब्रेक मिलता है और तुम्हें भी एजेंसी के काम के चलते साल में एक दो बार यहाँ आना ही पड़ता है। मेरे लिए इतना काफी होगा। ऐसे ही बातें करते हुए वो दोनों एजेंसी पहुंच चुके थे। वहीं दूसरी तरफ आशिका के जाने के बाद भी यज्ञ फेयर में खड़ा हुआ उसके बारे में सोच रहा था और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी। अपनी खुशी को जाहिर करते हुए वो जोर से चिल्लाया। वो काफी एक्साइटेड होकर खुद से बोला, समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं, क्या करूं, क्या कहूं। आशिका जिंदा है और आज मैं उससे मिला, उसे हग किया। और बोलते हुए यज्ञ एक पल के लिए रुका और उसकी सारी एक्साइटमेंट उसी पल में गायब हो गई थी। वो मुंह बनाकर बोला, अजीब है, जाते वक्त वो मॉम डैड को मैसेज देने के बजाय अपने उस सिली से हस्बैंड को मैसेज देने का कह रही थी। इतना प्यार करती है क्या वो उससे? उसका चेहरा और बाकी बातों से लगा तो नहीं कि उसे पुरानी बातें याद होंगी। फिर भी वो उस अभिमान राजवंश से प्यार करती है जिसके साथ बचपन में खेलते हुए उसकी वाइफ बना करती थी। डिस्गस्टिंग। अभिमान और आशिका के बारे में सोचकर यज्ञ का पूरा मूड बिगड़ गया था। आशिका ने अभिमान से बात करने के लिए कहा था तो वो उसकी इच्छा को इग्नोर भी नहीं कर सकता था। आखिर इतने सालों के लंबे इंतजार के बाद वो दोनों मिले थे और उस पर आशिका ने उससे कुछ मांगा था। अभिमान से बात करने के लिए यज्ञ ने अपना मोबाइल निकाला। वो डेड था तो यज्ञ उसे चार्ज करने के लिए वहीं किसी स्टॉल की तरफ बढ़ गया था।
दूसरी तरफ आशुतोष ने जैसे तैसे करके काजल को तो सुला दिया था, लेकिन उनकी नींद अभी भी गायब थी। यज्ञ से बात किए हुए पूरे एक घंटे बीत चुके थे। आशुतोष बार बार यज्ञ को कॉल किए जा रहे थे, इस उम्मीद के साथ कि अब तक उसने अपना फोन चार्ज कर दिया होगा। उसका फोन अभी भी बंद बता रहा था, इससे आशुतोष बुरी तरह झुंझला गए थे। ये लड़का इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? और जिस तरह से फोन बंद करके बैठा है, साफ है कि आशिका इसके सामने भी रही होगी, फिर भी इसने उसे खो दिया होगा, आशुतोष ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा। उनकी आंखें नम हो रही थीं। इस वक्त ऐसा कोई नहीं था जिससे आशुतोष अपने दिल की बात कर सके। थककर उन्होंने समय की परवाह किए बिना अभिमान को कॉल किया। अभिमान का हाल भी कुछ वैसा ही था। उसकी रिहान से बात हो गई थी और उसने इस बारे में किसी को नहीं कहा था। रिहान ने उसे यही समझाया था कि अगर आशिका ने उसे मैसेज भेजा है तो वो ठीक है, बस वो उसके काम के बारे में उसे नहीं बता सकता था। अभिमान को इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि अगर आशिका काम के सिलसिले में रुकी हुई थी तो वो उससे बात क्यों नहीं कर रही थी। मुश्किल से उसे सोए हुए आधे घंटे बीते थे और ठीक से नींद भी नहीं आई थी कि उसका मोबाइल बजा। अभिमान ने स्क्रीन के ऊपर आशुतोष का नाम देखा तो उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। अभिमान ने कॉल उठाया और चिढ़ते हुए बोला, मुझे खुशी है मिस्टर सिंघानिया कि हम दोनों का रिलेशन अब ठीक हो गया है, पर इतना भी अच्छा नहीं हुआ कि आप आधी रात को कॉल करेंगे और मुझे ठीक से सोने तक नहीं देंगे। बहुत मुश्किल से मुझे नींद आने लगी थी और आपने मुझे जगा दिया। वैसे ही मेरे सर में सोच सोच कर दर्द हो रहा है। क्या तुम अपना गुस्सा मुझ पर निकालना बंद करोगे? और क्या मतलब मैं तुम्हें आधी रात को कॉल नहीं कर सकता हूँ? रिश्ते में तुम्हारा ससुर लगता हूँ और बात मेरी बेटी से जुड़ी हुई है, तो तुम्हें कॉल नहीं करूँगा तो क्या पड़ोसियों को कॉल करूँगा? आशुतोष ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया। वो खुद यज्ञ की लापरवाही की वजह से परेशान थे। आशुतोष के डांटने पर अभिमान चुप हो गया था। वो उठकर बैठा और उसने लाइट्स ऑन कर ली थीं। कॉल पर उन दोनों के बीच कुछ सेकेंड्स तक ऐसी ही खामोशी छाई रही। आशुतोष ने गहरी सांस ली और भारी आवाज में कहा, थोड़ी देर पहले मैं और काजल यज्ञ से वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे, तो उसे भी ये सच पता चल गया कि आशिका जिंदा है और अब तक आप लोगों की आंखों के सामने ही थी, अभिमान ने शांत लहजे में कहा। हाँ, पर ठीक से बात करने का मौका नहीं मिला। यज्ञ का कॉल डिस्कनेक्ट हो गया और उसके बाद से उसका फोन बंद जा रहा है। वीडियो कॉल के दौरान हमने उसके पीछे आशिका को देखा था। मुझे किसी तरह का धोखा नहीं हुआ था, वो आशिका ही थी। मैं अब उस चेहरे को जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, आशुतोष ने बताया। क्या सच में आश थी? अभिमान आंखें बड़ी करके बोला। आप मुझे उसके कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए मिस्टर सिंघानिया। क्या वो ऐश से मिला था? कुछ कह नहीं सकते क्योंकि मैं ठीक से अपनी बात नहीं बता पाया था, ऊपर से कॉल भी कट हो गया था। अगर वो आशिका से मिला भी है तो मुझे डर है कि उसने उसके साथ किसी तरह की बदतमीजी ना की हो, आशुतोष ने अफसोस भरे लहजे में कहा। आई टेल यू मिस्टर सिंघानिया, अगर आपकी फैमिली में से किसी ने भी इस बार ऐश का दिल दुखाया है तो मैं उसे माफ नहीं करने वाला, और जब ऐश मेरे पास वापस आएगी तब ना ही मैं उसे आपसे मिलने देने वाला हूँ, अभिमान हल्के गुस्से में बोला। आशुतोष कुछ कहता उससे पहले अभिमान के मोबाइल पर दूसरा कॉल आया। उसने नंबर देखा तो वो जल्दी से बोला, क्या आप एक मिनट होल्ड करेंगे? मुझे एक इंटरनेशनल कॉल आ रहा है, ऐश हो सकती है। अगर ऐसा है तो प्लीज मेरी भी उससे बात करवाना, तुम दोनों कॉल अभी मर्ज करो, आशुतोष बेचैनी से बोले। अभिमान ने जल्दी से कॉल रिसीव किया और रिसीव करने के साथ ही आशुतोष को भी लाइन पर जोड़ लिया था। हेलो ऐश, ये तुम हो ना? अभिमान ने कांपती आवाज में पूछा। आज रिहान से जब अभिमान की बात हुई थी तब उसने यही कहा था कि वो जब आशिका के पास जाएगा तब उन दोनों की बात करवाने की कोशिश करेगा, और अभिमान को पूरी उम्मीद थी कि ये रिहान का ही कॉल था। अभिमान के साथ साथ आशुतोष की पलकें भी भीग रही थी और वो आशिका की आवाज़ सुनने के लिए तरस रहे थे। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा, अगले पाठ पर मिलते हैं।